शिवाजी मोरे खाने के डब्बे ले आता, शिवाजी मुझे भाई की तरह लगता, गांव की खबरें सुनाता, किन में झगड़े हो रहे हैं, कौन मर गया है, किसके यहाँ प्रसूति हुई है, मजदूरी मिली या नहीं, घर का संदेश, कई बातें मालूम हो जाती। उस दिन शिवाजी ने कहा, बाला की पत्नी भाग गई है। मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा। बाला की पत्नी बंबई की थी। बाला बंबई गया था कुछ कमाने धमाने की इच्छा से और वहीं शादी कराया। वास्तव में बाला ने अपनी पत्नी को फंसाया था। उसकी पत्नी मराठा जाति की थी, बाला महार अछूत, पर उसने अपनी जाति छिपाई थी। मैं मराठा हूँ, गांव में मेरी जमीन और कोठी है, आदि झूठी बातें कहकर उसने उसे फंसाया था। शादी करके गांव लौटते समय अंदापा के गन्ने के खेत की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह मेरी खेती है और गन्ना भी। मारवाड़ी की बैलगाड़ी को अपनी बतलाते हुए उसने कहा, यह मेरी बैलगाड़ी, और अंत में उसने झोपड़े में लाकर खड़ा कर दिया। झोपड़े में वह जैसे ही आई रोने लगी, बाल्या को गालियां देने लगी, पर बस्ती की औरतों ने बाल्या की इस स्त्री को धमकी दी, फिर वह चुपचाप जीने लगी। बाला के माँ बाप बहू बेटे को झोपड़ी में छोड़ बाहर सोने जाते। एक दिन तड़के ही उठकर बाला की पत्नी शौच के ले गई। बाल्या घर में ही सोया था आराम से, सूर्य की किरणें निकलने तक। माँ ने उसे जगाया, तब उसे पता लगा कि पत्नी पास में नहीं है। फिर क्या था, बाल्या की पत्नी मिली नहीं। घर के पिछवाड़े में मिला वह लोटा जो वह ले गई थी शौच के लिए। हॉस्टल में सभी दलित छात्र हॉस्टल छावनी की तरह लगता। मेरे भीतर एक प्रचंड संघर्ष आकार धारण कर रहा था। मैंने नमस्कार करना छोड़ दिया, जय भीम कहने लगा, आम्बेडकर कहना मैंने छोड़ दिया, बाबा साहब कहने लगा। मेरी तरुणाई को एक नया अर्थ प्राप्त होने लगा। शरीर भर का पूरा रक्त लावा की तरह उबल रहा था। विचार आराजकता और विध्वंस में बदल रहे थे। बाबा साहब की प्रतिमा देखता तो लगता कि 7 जन पूर्व की माँ से भेंट हो गई है। अन्याय अत्याचारों के समाचारों से जल रहा था, बेचैन हो रहा था। मेरी एक मुंह बोली बहन थी, उसका नाम था सुमन। गले की दुकान पर काम करने जाती, पति ठेला खींचता, 2 बच्चे थे। सुमन नाक नक्शे से आकर्षक थी, उसके कई लफड़े थे। पति एकदम भोला भाला, वह किसी पुरुष के साथ भाग जाती, मैं समझा बुझाकर वापस ले आता। एक बार वह किसी होटल के नौकर के साथ भाग गई, दूसरी बार किसी और के साथ। 5-6 महीने बाद पति के यहाँ वापस आती। एक बार एक ट्रक ड्राइवर उसे ले गया। दोनों बच्चों को ठेले पर बैठाकर पति ठेला खींचता, मुझे देखकर रुक जाता, नमस्कार करता। बच्चे मुझे मामा मामा कहते। उनकी नन्ही हथेलियों पर रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। इन बच्चों के माथे पर षष्ठी देवी ने पता नहीं क्या लिखा था। क्या इनका भविष्य कोई पढ़ सकता है? बचपन में मैंने सुना था कि जन्म के 5वें दिन षष्ठी देवी आकर नवजात शिशु के माथे पर उसका भविष्य लिख जाती है। माथे पर की चमड़ी हटा देने से क्या वे अक्षर दिखाई देंगे, अथवा यह सब कुछ झूठ है? चंद्या और मैं सोनू के घर जाता। सोनू चंद्या की नानी, झाड़ू वाली वह रोटियां लाकर देती। उसके घर में रोटियों से भरी टोकरी होती, कई दिनों के टुकड़े, सूखे फफूंद से भरे हुए, दुर्गंध भरे। वह कहती, खाना खाओ। टुकड़ों की टोकरी हमारे सम्मुख रखती, हम भूखे होते, मैं और चंद्या खाते, टुकड़ों पर आई फफूंद को रुमाल से पोंछते और खाते। सोनू नानी के पड़ोस में जनाबाई नामक झाड़ू वाली थी। हम सोनू नानी के घर पहुंचते तो उससे बातें करते, गपशप होती, शादी नौकरी आदि विषयों पर। मैं अक्सर कहता, मैं दहेज नहीं लूंगा, अंतरजातीय विवाह करूंगा। जनाबाई की बहन की एक बिन ब्याही लड़की थी। जनाबाई को मैं पसंद आ गया, उसने अपनी भांजी को मुझे बताने का निर्णय ले लिया। उस दिन दोपहर को एक मित्र के कपड़े पहनकर मैं गया, साथ में चंद्या भी था। मुझे खुशी हुई, होने वाली पत्नी के दर्शन की अपेक्षा थी। जनाबाई अपनी बहन की लड़की को ले आने वाली थी। मैं और चंद्या जब गए तब जनाबाई झाड़ू बना रही थी। सोनू नानी नहीं थी, सोनू का लड़का चंद्या का चाचा था। वह शराब पिए बैठा था, हम उसके पास जाकर बैठ गए। चंदे अपने काका से गपशप करने लगा। दारू की दुर्गंध आ रही थी। सोनू आई। चंद्या ने जैसे ही जनाबाई से पूछा कि लड़की क्यों नहीं आई, तो वह गुस्से से कहने लगी, हम खानदानी लोग हैं, हमारा खानदान 12 मासी है, हमें खानदानी लड़का ही चाहिए, हमें ऐसे वैसे लड़के नहीं चाहिए। लड़का ठीक है तो क्या हुआ, पर है तो अक्कर मासी। मैं अक्कर मासी हूँ, इसका पता उसे लग चुका था। जनाबाई की बातें कलेजे को छेद रही थी, मानो भरे चौक में किसी ने चाबुक मार दिया हो। वहीं चंद्या का चाचा मायप्पा बैठा था, उसे सब पता चल गया। उसने जनाबाई से कहा, हमारे बौद्ध धर्म में अक्कर मासी 12 मासी नहीं है, मैं दूंगा इन्हें अपनी लड़की। मायप्पा के वह शब्द मुझे संबोधि प्राप्त बुद्ध के शब्दों से भी अधिक सार्थक और मूल्यवान लगे। उस दिन शिवाजी मोरे मुझे बुलाने आया, कुछ खास व्यक्तिगत संदेशा होता तो शिवाजी मुझे अलग ले जाता। शिवाजी मेरे लिए पत्रकार ही था, मेरा संदेश घर पहुंचाता, घर का संदेश मुझे पहुंचाता। हम सब भगवान की तरह शिवाजी की प्रतीक्षा करते। शिवाजी की साइकिल की घंटी सुनाई देती तो हमारी बेचैनी कम हो जाती। उस दिन शिवाजी मुझे अलग ले जाकर धीरे से कहने लगा, पटेल के चंदू के साथ नागी की शादी हो गई है, तुलजापुर जाकर वे शादी कराए हैं। मैं चिंता मग्न हुआ, ठीक हुआ, पर यह शादी क्या स्थाई है? भविष्य में नागी का क्या होगा? क्या दोनों सुख से रह सकेंगे? इस शादी को लेकर गांव में कैसी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी? अगले सप्ताह संता माई मुझसे मिलने आई। नागी की शादी को लेकर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं गाँव ना पहुँचूँ इसलिए वह आई थी। संता माई बूढ़ी स्त्री, हमेशा तंबाकू खाने वाली, साड़ी चोली हमेशा फटी हुई। संता माई को हॉस्टल के कमरे में कैसे ले जाऊं? संता माई अगर गोरी बेहतरीन कपड़ों में होती तो मैं कमरे पर ले जाता। मुझे संता माई की लाज आ रही थी। सामने से जब कॉलेज के दोस्त दिखते तो मैं संता माई से दूरी रखकर चलता, जैसे कि यह दरिद्र स्त्री मेरी कोई लगती ही ना हो। संता माई मुझसे पूछताछ कर रही थी, मैं बोल नहीं रहा था। संता माई थाली होती तो मैं उन्हें अपने भीतर छिपा लेता। संता माई को मैं कलावती बुआ के घर ले गया। कलावती बुआ निवृत्ति मामा की पत्नी, हम जब भी उनके यहाँ जाते हंसकर स्वागत करती। हमसे वह कभी ऊबती नहीं थी। कलावती बुआ के कुल 7 लड़कियाँ थी, लड़का नहीं हुआ, इसलिए बुआ मामा दोनों नाराज रहते। संता माई बुआ के घर एक दिन रहकर चली गई। दूसरे दिन मैं बुआ के घर गया। बुआ अपनी लड़कियों को दहलीज पर लिए बैठी थी, मैं भी उनमें घुल मिल गया। बुआ ने मुझे कभी पराया नहीं मारा। सुमन खेल रही थी, उसने बुआ से पूछा, माँ संता माई मुसलमान है क्या? उसका प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि संता माई माथे पर बिंदी नहीं लगाती थी। पर बुआ को सुमन पर गुस्सा आया। संता माई को मुसलमान कहने का अर्थ दादा के साथ उनके संबंधों की चर्चा करना। बुआ ने सुमन को पीटा, इसमें सुमन की क्या गलती थी? आरक्षण की सुविधाएं बंद होने वाली हैं, ऐसी अफवाहें सुनकर मैं घबराता। आरक्षण रद्द करना है तो फिर हमें दलित स्थान मिल जाना चाहिए। आरक्षण की सुविधाएं हैं इसलिए तो मुझ जैसे लोग पढ़ पा रहे हैं। हम इस उम्र में जानवरों की रखवाली करना और माँ बाप की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना जरूरी होता है, पर मैं इस समय कॉलेज में पढ़ रहा था। माँ पिता रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहे थे, किताब के प्रत्येक पन्ने पर उनके श्रम, भूख और आशा को मैं देखता। संता माई का जोगवा और दादा की हमाली को भूल नहीं पा रहा था। गांव में किसी ने माँ बहनों से छेड़खानी की है, यह सुनकर अध्ययन में मन नहीं लगता। इच्छा होती कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दूँ और फावड़ा लेकर निकलूँ, माँ बाप की सहायता करूँ। 1979 में गांव की दलित बस्ती से जब हम दोनों ग्रेजुएट हो गए, तब हमारी उम्र के लड़के खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। आरक्षण के विरोध में नारा लगाने वालों से यह प्रार्थना है कि वे पहले जातीयता को खत्म करें, वे खुद अछूत का जीवन जिएं, गांव के बाहर आकर झुग्गियों में रह लें, शराबी पिता के पैरों के निकट भूख से छटपटाते हुए अध्ययन करें और तब यह शिकायत ना करें कि अन्याय हो रहा है। सवाल है कि मनुष्य के रूप में हमें स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? इसी कारण तो सवर्ण हमें शत्रु लगते हैं। लड़के मुझे अरे अबे से संबोधित करते हैं और मैं उन्हें आप कहता हूँ। मेरे जिह्वा के आसपास अगणित मनु के कानून चिपकाए गए हैं। पत्नी को पीटने वाला हाथ यहाँ अलबत्ता कमजोर पड़ जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं गाँव आता तो बहुत ऊब जाता। झोपड़ी के आसपास की गंदगी असहाय हो जाती। उसर गांव में मन नहीं लगता, मैं उदास हो जाता, कभी कभार शराब पीने लग जाता। नागी चंदू अवैवाहिक जीवन जी रहे थे। चंदू के पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया था। चंदू हमारे ही घर रह रहा था। खाना अलबत्ता वह अपने घर जाकर खा लेता। नागी के लिए दो चार रोटियां चुरा कर ले आता। नागी गर्भवती थी। नरमी 5-6 महीने में बड़ी हो जाएगी। उसके विवाह का भी प्रश्न था। संता माई मेरे विवाह के लिए आग्रह कर रही थी। मैं जब सोलापुर के लिए निकलता तब संता माई की आंखें भर आती। मेरे लिए तेल चुपड़ी चपातियां बनाती। दादा हमाली के पैसे बचाकर मुझे जेब खर्च के लिए देते। निर्मी वनी बस में घुसकर जगह पकड़ लेती। मैं खिड़की के पास बैठता। संता माई मसा माँ खिड़की के पास ही बाहर खड़ी होती। बस में भीड़ होती। दादा ऊपर सामान चढ़ाते। कंडक्टर टिकट देता। संता माई मुझे वास्तविकता का एहसास दिलाती। शराब का ग्राहक पहुंचा है इसलिए मसा माँ निकल जाती। दादा नामपट बदलते, पानी डालते, हमाली के पैसे मांगने बस में आते। मेरे पास आकर रुक जाते। नीचे उतरो, समय हो गया है, कंडक्टर चिल्लाता। दादा मुझे विदाई देते, कहते हमारी फिक्र मत किया कर, अध्ययन कर, किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस के यात्री मेरी तथा दादा की ओर देखते रहते। मुझे शर्म आती। हमाल के नाती के रूप में लोग मुझे पहचानते। कंडक्टर जल्दी सीटी दे दे, बस निकले ऐसा लगता। फटेहाल अवस्था में खड़ी संता माए निर्मी वनी बस के हिलने की प्रतीक्षा में होती। अवरुद्ध कंठ के कारण आंखें भर आती। कंडक्टर सीटी देता, बस निकलती। दादा संता माए निर्मी वनी के हिलने वाले हाथ बहुत देर तक मेरा पीछा करते रहते। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम दिया जाए इसलिए दलित पैंथर का बहुत बड़ा मोर्चा विधानसभा पर निकाला गया था। इस मोर्चे के लिए महाराष्ट्र से हजारों पैंथर आ चुके थे। सोलापुर से 1,000 पैंथर बंबई के लिए निकले। विराट मोर्चा सूर्य की तरह दिख रहा था। संघर्ष और संघटना का एहसास हो रहा था। हमारे मोर्चे पर पुलिस की लाठियां बरसी। बंबई में हो हल्ला हुआ। अनेक कार्यकर्ताओं की धड़ पकड़ हुई। हमारे तो बुरे हाल हुए। सभी ओर से पुलिस का कड़ा नियंत्रण था। दूसरे दिन मैं रानी लक्ष्मीबाई सब्जी मंडी पर गया। वहां चंद्या लक्ष्या थे। बंबई में पहली बार आया था। चंद्या लक्ष्या को ढूंढते मंडी में रुका, पर मैं उन्हें कैसे पहचानता। पिता की मृत्यु के बाद चंद्या लक्ष्या रोजगार की तलाश में बंबई चले गए थे। उनके विवाह भी हो गए थे। चंद्या बाप बन चुका था। वे भाई खला में रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मंडी में वे दोनों ठेला खींचते, हमाली करते। मैंने उन्हें बचपन में ही देखा था। वही चेहरा स्मृति पटल पर था। ठेला खींचने वाले प्रत्येक की ओर उसी दृष्टि से मैं देख रहा था, पर पहचान नहीं पा रहा था। एक दो से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं लग रहा था। चंद्या लक्ष्या से भेंट नहीं हो सकी। भेंट होती तो क्या वे पहचान सकते, क्या भाई की तरह व्यवहार करते। उम्र के 25 वर्ष बीत गए हैं, पर मैं अपने भाइयों को पहचान नहीं पाता, पिता को भी नहीं। वे सारे जीवित हैं। संयोग से अगर हम सब एक ही बस से सफर करते तो भी शायद एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। यह यात्रा ही विचित्र है। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम भूल भुलैया में हैं शायद। धृतराष्ट्र गंधारी की तरह, कर्ण कुंती की तरह, एकलव्य अश्वत्थामा की तरह, रणभूमि पर पिता, चाचा, बहन, भाई, माँ सब हैं। सब हैं इसका एहसास भी है, फिर भी हम लड़ रहे हैं खुद से ही, शत्रु समझकर, क्योंकि हमारे जीवन के सूत्र नियति के हाथों में हैं। हम पराजित हैं, फिर भी लड़ रहे हैं अगली पराजय के लिए, किसी और के गुलाम ना बने इसलिए। शिवाजी मोरे उस दिन फिर एक संदेशा ले आया था। संता माए चंद्या की बहन का हाथ मेरे लिए मांगने वाली थी। चंद्या और मैं पहली कक्षा से बीए तक वर्ग मित्र थे। एक थाली में खाने वाले, एक लोटे का पानी पीने वाले, एक ही बिस्तर पर सोने वाले। चंद्या की माँ मुझ पर कितना स्नेह जतलाती। मित्र की बहन पत्नी के रूप में मिलेगी, इसकी मुझे कितनी खुशी हुई। पर दूसरे दिन शिवाजी ने विपरीत खबर दी। कलेजे को छेदने वाली थी वह खबर। चंद्या के माँ पिता ने मुझे नकारा था। मैं अक्कर मासी था ना। यहाँ के मनुष्य मनुष्य की अपेक्षा रूढ़ियों पर अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ की संस्कृति से मैं द्वेष करता हूँ, रूढ़ियों से चिढ़ता हूँ। पर सिवा द्वेष और चिढ़ने के मैं कर भी क्या सकता हूँ। इन सारी स्थितियों को चुपचाप झेल लेता हूँ। इस अपमान को भी पी गया। विवाह मुझे बेमतलब का लगने लगा। किसी लड़की को देखने जाने का अर्थ था तेजाब शरीर पर छिड़क लेना। इच्छा ही नहीं होती थी, बजाय इसके जिंदगी भर अविवाहित रहना ठीक लगता। चंद्या की दादी तुकव्या आराधिका थी। ईश्वर को संतत संतति समर्पित करने की परंपरा केवल पिछड़ी जातियों में ही है। अंबाबाई, यल्लामा, लक्ष्मी, खंडोबा, ये महार मातंगों के आराध्य दैवत। मसोबा, मरीमाई, खोकल्याई, सटवाई नामों की सूची बढ़ाई जा सकती है। किसी के संतति नहीं हो रही हो तो ईश्वर से मनौती मांग लेते। अंबाबाई से मनौती मांगी, लड़की हुई तो उसका नाम अंबाबाई रख दिया और लड़का हुआ तो अंबादास, और फिर बाद में इन बेटे बेटियों को आराधक के रूप में अंबाबाई के लिए देते हैं। लक्ष्मी से मनौती मांगी, बेटी हुई तो नाम लक्ष्मी और बेटा हुआ तो नाम लक्ष्मण। लक्ष्मी को पोतराज के लिए छोड़ दिया जाता है। खंडोबा पर भी बेटे बेटियां छोड़ने का इधर रिवाज है। बेटे को वाद्या तथा बेटी को मुरली कहा जाता है। यल्लम्मा के जोगत्या और जोगती होते हैं। मैंने कभी ब्राह्मण, पोतराज या लिंगायत वाद्या को देखा नहीं है। दलितों में ही ये रूढ़ियाँ क्यों? भगवान के नाम पर छोड़े गए स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं होते, उनका विवाह तो ईश्वर से हो जाता है ना। देवदासी अपने मर्जी के पुरुष के साथ जी सकती है। देवदासी की संतान को अक्कर मासी कहते हैं। उन्हें बलुंत का अधिकार नहीं होता, ईश्वर के नाम पर भीख मांगकर उन्हें जीना पड़ता है। आराधिका का अर्थ है अंबाबाई की साधिका भक्तिन, उसे तुलजापुर ले जाकर गुरु बना देते हैं। गुरु हाथों में पड़ी पोथी देता है, उससे शपथ ले लेता है, सच कहो, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो, और वह स्त्री आराधिका के रूप में जीने लगती है। संता माई के हाथ में भी पड़ी है। चंदा माँ की सहेली सेटवा माँ के हाथ में भी पड़ी है। चंद्या का चाचा ज्ञानबा मामा के हाथ में भी पड़ी है। पड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है। हमारी दलित बस्ती जैसे तुलजापुर को जाती है, वैसे चिवड़ी की लक्ष्मी को भी जाती है। मैं एक बार अंबाबाई के विरोध में बोल गया तो संता माए लाल पीली हो गई थी। उन्होंने मुझे साफ दिया था कि तू अंबाबाई के खिलाफ बोलता रहा तो तेरा कभी ठीक नहीं होगा, तेरे बदन में कीड़े पड़ जाएंगे और उसी हालत में तू मरेगा। दलितों की हमारी इस बस्ती में आराधकों के तीन घर हैं। पांच छह पोतराज हैं। शंभू बाप का पहला लड़का आपासा पोतराज था, पर वह मर गया। भगवान के नाम पर छोड़ा हुआ आदमी भी मर जाता है। आपासा मर गया इसलिए संगू को पोतराज बनाया गया, पर संगू ने सिर के बाल काट दिए, भगवान के बाल काट दिए, इसलिए उसको बहुत अपमानित किया गया। संगू को दौरे पड़ने लगे। उसको जब दौरे पड़ते तो लोग कहते लक्ष्मी उसको छल रही है। चिवड़ी की यात्रा को हम प्रतिवर्ष जाते, चिवड़ी के पहाड़ पर जाते समय संता माई के शरीर में देवी आती। वह चिल्लाती, भागती, देवी के मंदिर में जाकर दर्शन करने तक वह कहीं भी रुकती नहीं थी, तेजी से भागती। उनके पीछे दादा, निर्मी और मैं भागते, हम थक जाते। चिवड़ी की लक्ष्मी का मंदिर अनेक छोटे बड़े पहाड़ों के बीच में है। यह पहाड़ी प्रदेश यात्रा के दिनों भीड़ से भर जाता है। सभी ओर बैलगाड़ियाँ, हजारों पोतराज टफली बजाते घूमते रहते हैं। उनका रंगा हुआ चेहरा और दौड़ो दौड़ो के उनके नारे भयावह लगते, मन कांपने लगता। हजारों मुर्गियों, बकरियों और बैलों की यहाँ बलि दी जाती। देवी के सम्मुख खून का कीचड़ तैयार होता। मंदिर के प्रांगण में पोतराज टफली बजाते आते और उनकी इस ताल पर 10-12 औरतें बदन में देवी आने से नाचती रहती। उनकी वह विद्रोह, हंसी, चिल्लाना, घूमना, शरीर का फैलना, सब कुछ भयंकर लगता। कोई बाजा बजाने वाला अगर रुक जाता तो औरतें उसे परेशान करती कि वह बजाता रहे। औरतें गाते बजाते दंडवत डालती। पोतराज के यहाँ संस्कार होते। देवी के मंदिर में छोटे बच्चे को नीचे फेंक दिया जाता। लोग उन्हें नीचे चादर में बराबर झेलते। यह भी एक प्रकार की मनौती होती। कुछ लोग बच्चों के बाल उतारने आते, कोई नाम रखने आते। अनेक मनौतियां यहाँ पूरी की जाती, नई मनौतियां मांगी जाती। सभी ओर चूल्हे जलते, बकरियों के छीले हुए शरीर बैलगाड़ी पर टंगे रहते। चिवड़ी का पटेल यात्रा के पहले दिन प्रातः आकर अपनी खानदानी तलवार से बकरे की पहली बलि देता। उसके बाद ही अन्य बकरे कटते। पंक्ति में पड़े हुए बकरों के सिरों को देखना महाभयंकर लगता। खाल निकालकर जिंदा बकरे को देवी के सम्मुख चलाया जाता। नई नई औरतें तेजी से दौड़ती हुई मंदिर की ओर लगातार भागती। उनके पीछे उनके रिश्तेदार दौड़ते। देवी की भभूत लगाने के बाद ही वे होश में आती। अगर होश में नहीं आती तो उनके बदन में देवी नहीं, भूत है, ऐसा कहा जाता। दत्तू माँ की पत्नी के भी शरीर में देवी आती। जब कभी ऐसा होता तो दत्तू मामा पत्नी के पैरों को बांधते और खूब पीटते। कदेर के पटेल की रखेल बहुत खूबसूरत थी, गोरी थी, बाघ की जिह्वा की तरह। उसकी रखवाली के लिए 5-6 मुस्टंडे थे। उसके शरीर में देवी आती तो बहुत हो हल्ला मचाती। उस हालत में जब वह घूमती थी तब उसके साथ डफली बजाना बहुत मुश्किल होता था। उसकी कमर पकड़ने वाले परेशान हो जाते। जब वह नाचती तो उसकी धोती खुल जाती। धोती खुल न जाए इसलिए मुस्टंडे पटलियां बांधने की कोशिश करते। पटलियां बांधते समय मुस्टंडे जानबूझकर अपना हाथ काफ़ी नीचे तक ले जाते, एकदम योनि तक। यह स्पर्श उसके ध्यान में आ जाता और घूमते हुए ही उस मुस्टंडे को गालियाँ देती। यह कहानी दत्तू मामा हमें सुनाते। मटन पकता, हम सब बैलगाड़ी के नीचे बैठे रहते और वह कहानियाँ सुनाते, हम खूब हंसते। लक्ष्मी की यात्रा संपन्न होते ही दूसरे दिन हम सब लोग वहाँ से निकल जाते, एक भी नहीं रुकता, क्योंकि सबका यह विश्वास था कि दूसरे दिन वहाँ भूतों का मेला लगता है। रात में भूत प्रेत इकट्ठे होते हैं, बेताल की पालकी निकलती है, बलि दिए गए जानवरों का वे रक्त चाटते हैं, नाचते हैं, अगर कोई मनुष्य दिखलाई देता तो उसकी गर्दन नोचते हैं। इन बातों पर मैं कतई विश्वास नहीं रखता। तब संता माई मुझे एक घटना सुनाती। एक बार तुझ जैसे ही तीनों ने ठान लिया कि भूतों का मेला देख ही लेंगे, वे वहां रुक गए। एक पेड़ पर जा बैठा, दूसरा मंदिर में छिप गया, तीसरा मंदिर के पीछे छिप गया। रात के 12 बजे भूतों की पालकी आने लगी। पहाड़ पर सभी ओर दिए ही दिए दिखने लगे। पेड़ पर चढ़ा आदमी डर के मारे नीचे गिर गया, मर गया। भूतों ने शोर मचाया, उन्हें आदमी की गंध आई थी, उसे मारना चाह रहे थे। देवी ने कहा, पेट के पास का खाओ, पीठ के पास का नहीं। मंदिर में बैठा हुआ आदमी है सुनकर डर के मारे मर गया, क्योंकि वह मंदिर के पेट के पास था। मंदिर के पीछे जो था वह अलबत्ता बच गया। संता माँ यह कहानी ऐसे कहती जैसे उन्होंने यह खुद अभी अभी देखा हो। मैं कहता, मुझे पिस्तौल दो, मैं रुक जाता हूँ वहाँ। मेरे गांव में भूत साधकों के तीन घर हैं, दो धनगरों की बस्ती में, एक महारों की बस्ती में। ये तीनों त्यौहार पर ढोल बजाते हैं। भूता पुजारी के शरीर में भगवान आते हैं। सारा गांव इकट्ठा होता, भूता पुजारी पूरा भविष्य उस अवस्था में बतला देता है। फसल, वर्षा, पाप पुण्य, वस्तुओं के भाव, दुनिया की स्थिति आदि आदि भविष्य की बातें बतला देता है। दूसरे दिन भूता पुजारी को कोई तंबाकू तक नहीं देता। साक्षात भगवान का निवास जिसके शरीर में होता, वह एक कप चाय का भी हकदार नहीं होता। अमावस्या पूर्णिमा को इस बस्ती में भूत प्रेत पिशाच बाधा के उपचार किए जाते हैं। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे दूर दूर से हमारे गांव में आते हैं। काफ़ी देर तक ढोल बजाया जाता है। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे चिल्लाने लगते हैं। भूता पुजारी उल्टी छड़ी मारता है। अमावस्या भयावह लगती। चौपाल पर छोटे छोटे बच्चे भूता पुजारी का खेल खेलते हैं। किसी एक के शरीर में भगवान आते हैं, वह भूता पुजारी की नकल पर नाचता है। दो लड़के उसकी कमर पकड़ते हैं, कुछ ढोल पीटने का अभिनय करते हैं। मैं उस खेल को देख रहा हूँ। क्रिकेट खेलने वाले शहर के वे बच्चे किधर और ये किधर? यह पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है? शहर देहात में दो ध्रुवों का अंतर क्यों है? कब सुधरेंगे हमारे देहात? गाँव की है जाति बिरादरी, यह वर्ण व्यवस्था, ये अंधश्रद्धालु जन कब समझेंगे कि वे उन्हीं की उंगलियां उन्हीं की आंखों में डाली जा रही हैं? क्यों नहीं फटता पड़ोस का यह तालाब और क्यों नहीं बह जाता मेरा यह गांव उसमें? कोंडी बाप मसा का दादा, हमारी महार बस्ती का निर्विरोध पंच अपना नाम भी पढ़ लिख नहीं सकता। शिवराम के होटल के बाहर स्थित कप सौसर लेकर चुपचाप चाय पी लेता है। सवर्णों द्वारा फूकी हुई आधी बीड़ी पीकर उन्हें श्रद्धापूर्वक जो हार कहता है, उसे क्या पता सत्ता, विकेंद्रीकरण, पंचायत राज, जिन्हें मत पत्रिका भी पढ़नी नहीं आती, वे शासन करने वाले कब बनेंगे? एक कप चाय पर यहाँ मत पत्रिकाएं सील बंद हो रही हैं, किस सत्ता के लिए, किस प्रकार के परिवर्तन के लिए? मेरे गांव में बिट्ठल सप्ताह बहुत ही बेहतरीन होता है। पंढरपुर की तरह हमारा गांव वारकरियों से भर जाता। भारुड़, अभंग, गुलनी, करताल, मजीरा, मृदंग के निनाद में गांव डूब जाता। उस दिन शिवाजी मोरे ने मुझे संदेश दिया, सप्ताह को आने के लिए कहा। उस समय मेरे कमरे में 5-6 मित्र थे, उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की गाँव आने की और हम सब इस सप्ताह गाँव की ओर साइकिल से निकले। मेरे घर का मतलब था बस स्टैंड। स्टैंड पर स्थित बेंचों पर मैंने दोस्तों को बैठा दिया, चाय पिलाई। वे कहने लगे घर चलो, पर मेरा घर था ही कहाँ। पिता कोठी में रहते, माँ झोपड़ी में, मैं सड़क पर स्टैंड के पीछे खुले में। नानी ने रसोई बना दी, एक थाली में हम पांचों ने खाना खाया। नानी हमें साथ दोस्तों वाली कहानी सुना रही थी। रात में हम भाड़ूर सुनते रहे, पर दोस्त उसमें नहीं रम रहे थे, उन्हें नींद आने लगी। हम स्टैंड पर आए, संता माए दादा सो चुके थे, उन्हें जगाया। बस स्टैंड पर गुदरी फैला दी और दोस्तों से सोने के लिए कहा। स्टैंड पर काफ़ी लोग थे, उनके मजाक चल रहे थे, अड़ोस पड़ोस के गांवों से सप्ताह के लिए वे लोग आए हुए थे। स्टैंड पर वे गपशप करते थे। मैं दोस्तों को लेकर लेट गया, पर नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। दोस्त सोनवणी लोगों को डांट रहा था, चुप रहने के लिए कह रहा था। लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते, फिर जोर शोर से बातें करते, हंसते। सोनवणी ने फिर डांटा, बाद में वह गालियां देने लगा। थोड़ी देर बाद झगड़ा शुरू हो गया। उनमें से एक यात्री बड़ा तेज था, कहने लगा, तुम्हारा घर नहीं है क्या? यहाँ स्टैंड पर सो रहे हो, घर पर जाकर सो जाओ आराम से। यह सार्वजनिक जगह है, हम बातें करेंगे, यह सरकारी जगह है। संता माई बीच बचाव के लिए उठी, फिर सब खामोश हो गए। दूसरे दिन दोस्त सोलापुर चले गए। दोस्तों की असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद हुआ, दरिद्रता का एहसास तीव्र होने लगा। उस दिन संता माई ने बहुत देर तक चूल्हा नहीं सुलगाया, बची हुई एक रोटी हम तीनों कैसे खाते? मुझे तो भूख लगी थी। संता माई ने आटे का डब्बा दिखाया, कहने लगी, आटा है, बाद में रोटी बनाऊंगी, तू खा ले, हमारी चिंता ना कर। मैंने डब्बा उठाकर देखा, वजनदार लगा कि अनाज पीस कर लाई होंगी, इसलिए मैंने बची हुई रोटी खा ली। पेट भर पानी पी गया, संता माई बाहर निकल गई। मैंने आटे का डब्बा खोलकर देखा, भीतर आटा नहीं था, थे दो पत्थर। डब्बा वजनदार लगे इसलिए पत्थर रखे गए थे। निर्मी विवाह योग्य हो गई थी, मेरी भी शादी करनी थी, पर शादी कैसे होगी, कौन संबंध जोड़ेगा हमसे? शराब पीने के लिए कोई आता तो माँ निर्मी वनी के लिए कहती, इनका विवाह करना है, कहीं कोशिश कीजिए। शराब के नशे में लोग कुछ भी बोलते, भूली भाली माँ बड़ी आशा से उन्हें एक कप शराब फोकट में दे देती। नशा अधिक होता वे मुझे नजदीक बुलाते, कहते, तू चिंता मत कर, तेरी शादी हम करेंगे, तुझे नौकरी दिलवाएंगे, हमारे कई परिचित हैं, पर मैट्रिक पास होना जरूरी है। मैं उनसे कहता, मैं बीए हूँ, अब एमए कर रहा हूँ, पर शराबी नशे में कहते, एमए बीए बहुत बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तू केवल मैट्रिक पास होकर हमारे पास आ जा, बस। मजा माँ की एक सहेली थी, मातंग समाज की, पटेल से उसकी एक लड़की हुई थी। वह डफली पर गाना गाती घूमती, माँ काका कहते कि उसके साथ तेरी शादी कर देंगे, पर कुछ हो ना सका। शराब पीने के लिए कोई ग्राहक आता तो पूछती, आपके गाँव में पटेल की ख्याल के लड़के या क्या लड़की के विवाह के लिए हैं? लड़की का जन्म जैसे हुआ वैसा ही जन्म किसी लड़के का हुआ होगा तो उसके साथ ही तो सगाई होगी, छोटे को छोटे ही मिलेंगे, दूसरे कौन। ऐसे समय तुझे लड़की दे दूंगा, ऐसा कहने वाले शराबी मायप्पा की याद आ जाती। उसकी लड़की कैसी होगी, मैं सोचता, मायप्पा कामले G.P. में सेवक था। उसके अरुण, हरी, राहुल और सुनील नामक चार लड़के तथा कुसुम नामक एक बेटी थी। मैं चंद्रा के साथ हमेशा सोनू के घर जाता। एक बार मायप्पा कामले सोलापुर आया था, उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसको शराब पिलाई, उसके पास बारसी लौटाने के लिए पैसे नहीं थे, टिकट के लिए पैसे भी मैंने ही दिए। बारसी लौटने के बाद मनी ऑर्डर करूंगा, ऐसा उसने कहा। पैसे उसने नहीं भिजवाए, उल्टे अगले सप्ताह वह फिर आया 100 रुपये उधार मांगने के लिए। मेरी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, पैसे नहीं है, उसने कहा। उसी दिन मुझे शिष्यवृत्ति के पैसे मिले थे, मैंने रुपये दे दिए। अगले महीने फिर मायप्पा कामले के आने की सूचना मिली। मैं हॉस्टल से निकल गया, भटकता रहा, क्योंकि उसे शराब पिलाना, रुपये उधार देना हर बार संभव नहीं था। पर दूसरे दिन वह बराबर टपका, मुझे लगा कि वह प्रतीक्षा कर लौट गया होगा, पर नहीं, वह मुझे मिला और मेरे विवाह की बात उसने निकाली। वह अपनी लड़की मुझे देना चाहता था। लड़की ना देखते हुए ही मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे कोई लड़की नहीं दे रहा था। मेरा विवाह कुसुम के साथ तथा बहन निर्मी का विवाह कुसुम के भाई के साथ निश्चित हुआ। शरण रंडियों के पास जाता है, शराब पीता है, इसलिए कुसुम के साथ इसका विवाह ना किया जाए, ऐसा आग्रह उसका भाई कर रहा था। चंद्रा के माँ पिता ने भी इस विवाह का विरोध किया, क्योंकि हम अक्कर मासी हैं, हमारे साथ संबंध ना किया जाए, ऐसा उनका कहना था। पर मायप्पा कामले ने किसी की नहीं सुनी और शादी पक्की कर दी। बारसी वाले ने विवाह के निमंत्रण पत्रिका पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर छापी तो काका ने शिव पार्वती की तस्वीर छाप दी। शादी हमारे गाँव में होने वाली थी। दीवारों पर जय भीम, नमो बुद्धाय न लिखते हुए केवल ओम लिखा जाए, ऐसा काका का कहना था। 24 फीट लंबा चौपाल मैंने और निर्मी ने गोबर से लिप दिया। सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। हथेलियों पर फफोले पड़ गए, मैंने ही फरारे लगाए। बुद्ध फूले, अंबेडकर की तस्वीरें लगाई। शादी बौद्ध पद्धति से हो, यह मेरा आग्रह था, तो काका हिंदू पद्धति का आग्रह कर रहे थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए। निर्धारित समय टल गया, देर से शादी हुई। मैं मंगलसूत्र बांधने की तैयारी कर ही रहा था कि भीड़ में से काका के गुरु आए और उन्होंने मंगलाष्टक शुरू किए। अक्षतों की अचानक वर्षा हुई, क्षण भर में सारी भीड़ निकल गई। हाथ में माइक लेकर मैं तल्लीनता से बोलने लगा, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, हिंदू धर्म से की गई शादी मुझे माननी नहीं है। हम बौद्ध पद्धति से विवाहबद्ध होने वाले हैं, इसलिए हम पर जिनका विवाह जिनका स्नेह है वे यहाँ से लौटे नहीं। मेरी विनती किसी ने नहीं सुनी। अतिथि विस्थापितों की तरह खड़े थे, काका, दादा, संता माए, मसा माए, कोई भी नहीं थे वहाँ। दादा स्टैंड पर हमाली कर रहे थे, मसा माँ घर पर ग्राहकों को शराब बेच रही थी और मैं कुसुम के गले में पुष्पहार डाल रहा था, हरी निर्मी के गले में। विवाह में कलावती बुआ ने मुझे स्टेनलेस स्टील का एक लोटा भेंट में दिया था। वह लोटा मुझे कितना महत्वपूर्ण लगता। जर्मन के बर्तन तक जिनको प्राप्त नहीं हुए उन्हें स्टेनलेस स्टील का बर्तन पहली बार मिला था। संता माया लोटा गुप्त संपत्ति की तरह कपड़े में बांधकर बक्से में रख देती। जब घर पर कोई आता तभी उसे बाहर निकालती, उस लोटे में उसे पानी देती। खाना खाते समय सुनी उस लोटे के पास में लिए बैठी थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, जर्मन के लोटे से पानी पीना छोड़ स्टील के लोटे से पानी क्यों पिए। मैंने वह लोटा उससे छीन लिया और बक्से में रख दिया। शादी हुई पर लड़की को वे ससुराल नहीं भेज रहे थे। सास कहती, तुम्हारे घर का चाल चलन ठीक नहीं है, घर में शराब का धंधा है, 10 तरह के लोग आते हैं, मेरी लड़की बिगड़ जाएगी, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब भेजूंगी, तब तक लड़की को विदा नहीं करूंगी। अब मेरी नौकरी कब लगेगी, नौकरी अगर नहीं मिली तो। हमारे घर के चाल चलन ठीक नहीं है तो फिर शादी क्यों की, मैं काफ़ी छटपटाता। मसा माँ कहती, तू उसे कभी लेकर मत आ, पड़ी रहने दे, मायके में ही सरने दे। संता माई कहती, शादी हुई है ना, एक बार उसके पास सोकर आ जा। मैं बारसी जाता, ससुर हर बार शराब पीकर झगड़ता, सास गालियां देती, तुम सड़े हुए लोग हो, हम लोगों ने तुम्हें शुद्ध किया है, सड़क पर तो पड़े हुए थे। मुझे घर से बाहर करते सास बड़ी भयंकर औरत थी, हमेशा मुझे अपमानित करती। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आता, मैं उन पर झल्लाता। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते, तमाशा देखते। पत्नी को वे लोग भेज नहीं रहे थे, बारसी जाता तो घर के बाहर सुलाते। मैं भड़क उठता, रात में सास को उठाता, रंडी के यहाँ जाने के लिए पैसे मांगता, वह और चिढ़ती। मैं कसमसाता हुआ सोता, इच्छा होती कि सास को ही भगा ले जाऊँ। मेरा साला दलित पैंथर का कार्यकर्ता था, चौक में वह गपशप मारता खड़ा था। पैंथर के कार्यकर्ताओं से उसने मेरी पहचान करा दी थी। हम सब मूवमेंट पर बोलने लगे। इतने में दादा का मामा गुलाम हुसैन हवलदार वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, साइकिल रोकी, मुझसे बातचीत करने लगा, घर जाने के लिए कहा, चला गया। पैंथर मित्र ने पूछा, तुम्हारे इसकी जान पहचान कैसी। मैं अनायास बोल गया, वह मेरे रिश्तेदार हैं। पैंथर्स के मन में प्रश्न पैदा हुआ, गुलाम हुसैन हवलदार मुसलमान है, लिम्बाले का रिश्तेदार कैसा, कैसे। सभी खामोश हो गए। शाम के समय मेरा ससुर काफी शराब पीकर आया और उससे झगड़ने लगा। सास भी उससे मिल गई, हमें झगड़ा शुरू हुआ। मेरी पत्नी परेशान हो उठी, अक्कर मासी बारह मासी उसकी समझ में नहीं आता। मायाप्पा कामले कहने लगा, मेरा लड़का दलित पैंथर का अध्यक्ष है, सभी और उसकी इज्जत है, उस मुसलमान को तुम अपना रिश्तेदार बतलाते हो, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमने तुम्हारी असलियत को सबसे छिपाया था, थोड़ी इज्जत से जियो, अगर संभव नहीं तो मेरे घर पैर न रखूं। मुझे लगा कि मुझे कोई दाग रहा है, मुसलमान रिश्तेदार नहीं हो सकता, उसका धर्म अलग, जैसे वह कोई अलग जानवर ही है, हमसे भिन्न जानवर, औलाद औलाद में इतना फर्क। कुसुम को लेकर मैं निकला पर मायाप्पा कामले बीच में आया। कुसुम के हाथों की थैलियां उसने सड़क पर फेंक दी और जबरदस्ती खींचकर वह उसे भीतर ले जाने लगा। कुसुम रोने लगी, शरण शरण कहकर मुझे पुकारने लगी। मैं दौड़ता गया और ससुर की गर्दन पकड़ ली, तब उसने कुसुम को छोड़ दिया। मैं पत्नी को लेकर स्टैंड पर गया पर वहां मेरा साला साइकिल लेकर उपस्थित था। मैं यह सब सह रहा था क्योंकि उस घर में मेरी बहन दी गई थी। निर्मी अपने ससुराल में खुश थी। नागी को चंदू से गर्भ रह गया था, नागी चंदू भी अब सुख से जी रहे थे। वनी साल दो साल में बड़ी हो जाएगी, उसके पति का पता ही नहीं है, शादी टूट ही गई थी। मैंने उसके पति की खोज में उसके गांव जाने की सोच रहा था और एक दिन निकला भी। होटी पुराने निजाम प्रदेश का देहात, इस गांव में आज भी बिजली, बस या डाकघर नहीं है। नल दुर्ग के बाजार के दिन पोस्टमैन होटी के लोगों के पत्र बांटता है। मैं जब पहुंचा तब पर्वत दादा खाट पर सोया था, मुझे देखा तो वह जग गया। वनी का पति वहां नहीं था, 10-12 साल का वह लड़का पता नहीं कहाँ भाग गया था। परबत दादा ने 4 और साथियों को इकट्ठा कर एक लंगड़े बैल को काटा था। मांस के लोथड़े ही लोथड़े, सभी और खून के छींटे, मक्खियों की भिनभिनाहट। मेरे लिए उसने बैल काटा था, इस बैल का मांस खत्म होने तक मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, ऐसा वह कह रहा था। मैं आश्चर्यचकित हुआ, आखिर मैं कितना खाता। बैल काटकर उसके हिस्से डाले गए थे। दलित बस्ती के लोग आ आकर अपना अपना हिस्सा ले जा रहे थे। परबत दादा हिस्से बेच रहा था। रत्ना माए मांस पका रही थी। चालू लड़कियां मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं पक्के मांस के टुकड़े खा रहा था। कुछ दिनों बाद मैं वापस आने लगा तो मुझे विदाई देने के लिए परबत दादा काफ़ी दूर तक आया। वह लगातार कुछ कह रहा था। काफ़ी दूर तक जाने के बाद घाटी की ओर इशारा करके वह रझाकार के समय की यादें दोहराने लगा। उन दिनों हॉटी में मुसलमानों के घरों में जाकर हमने उन्हें पकड़ा, कुछ भाग गए, सबको पकड़कर इस मैदान में ले आए। बैल को काटते समय की छुरी देखी है ना, उससे मैंने अपने हाथों से 11 मुसलमानों की गर्दनें धड़-सलक कर दी थी। एक पंक्ति में सबको सुलाकर गर्दनें काटते और रात में उन्हें जला देते। मुसलमान औरतों का उपयोग गांव वाले रंडियों की तरह करते रहे। मुसलमान और हिंदू दोनों इसी देश में जन्म ले चुके हैं। दोनों का खून लाल, पर दोनों के धर्म भिन्न। धर्म भिन्न इसलिए मनुष्य मनुष्य के खिलाफ उठता है, धर्म के लिए मारकाट करता है, फसाद करता है, धर्म युद्ध करता है, पर मनुष्य के लिए उसके पास थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। मनुष्य मनुष्य पर प्रेम क्यों नहीं करता? दोनों के बीच धर्म क्यों आता है? मनुष्य क्यों बंदिस्त हो जाता है रूढ़ियों और कर्मकांडों में? टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में मेरी नियुक्ति अहमदपुर में हो गई। अपनी शिक्षा मैंने अधूरी ही छोड़ दी। आर्थिक परेशानियों के कारण एमए ना करते हुए मैंने नौकरी स्वीकार की। संता माए और दादा अब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। मैं शादीशुदा था, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। टेलीफोन विभाग में मुझे ऑपरेटर की नौकरी मिल गई थी, अहमदपुर में अर्थात मराठवाड़ा में। मराठवाड़ा नामांतर आंदोलन से धधक रहा था। मुझे भय महसूस होने लगा। नामांतर आंदोलन में किसी टेलीफोन एक्सचेंज विभाग को आग लगाई गई थी। पुलिस चौकी पर आक्रमण हुआ था। पुलिस फायरिंग में 2 मर चुके थे। वहाँ के विधायक के घर पर भी पत्थरबाजी हुई थी। सभी ओर भयावह वातावरण था। खासकर मराठवाड़ा में स्थिति विस्फोटक थी। फसाद शुरू हुआ था। दलित बस्तियां दिन दहाड़े जलाई जा रही थी, खून हो रहे थे। मराठवाड़ा बंद का आदेश भयावह लगता। महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में लॉन्ग मार्च निकल रहे थे। दैनिक पत्रों में आगजनी और धर पकड़ की खबरें छप रही थी। मराठवाड़ा का यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा था। मेरे रक्त के एक एक कण में एक आंदोलन आकार धारण कर रहा था। इस आंदोलन के नए पत्ते सूर्य की तरह तेजस्वी थे। दलित सवर्ण के बीच तीव्र द्वेष उभर रहा था। अंततः सरकार को नामांतर का निर्णय पीछे लेना पड़ा। बापूराव जगताप जोगेंद्र कवाड़े का नेतृत्व प्रेरणादायी लग रहा था। दलितों को मिलने वाली सुविधाएं, शिक्षा के कारण उनमें उभरती अस्मिता व स्वाभिमान और इस नई अस्मिता से जीने वाला दलित समाज, आंदोलनों के कारण उभरने वाला विद्रोही युवक, नौकरियों के कारण सुखी जीवन जीने वाला अछूत, धर्मांतर के कारण थोपे गए कामों के प्रति उसकी अरुचि, इन विविध कारणों से सवर्ण हिंदू चिढ़ गए थे। हजारों वर्षों से कुत्ते बिल्लियों की तरह उनके पैरों के निकट गुलाम बनकर जीने वाला यह समाज उनकी बराबरी करने की कोशिश में था। स्वभावतः उसके इस परिवर्तन और अस्मिता को स्वीकार करने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी जाति छिपाना जरूरी लगा। लिम्बाले कहने के बाद लोग मुझे लिंगायत समझते। लिंगायत मुझे झट से नसीक लगते। मैं भी लिंगायत बस्ती में रहने लगा, शिव भजनों में रस लेने लगा। पहले ही सप्ताह में मैंने मित्रों को पत्र लिखा कि कृपया पत्र में जय भीम ना लिखा करो। मराठवाड़ा में तीव्र जाति भेद है। नामांतर के झगड़े अभी जारी हैं। पटेल, जोशी आदि उपनामों के मित्रों से पत्राचार शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें, पुस्तकें बक्से में बंद करके रख दी। खांडेकर के उपन्यास या जासूसी उपन्यास पढ़ने लगा। किसी दलित मित्र को अगर कहीं रास्ते में दूर से मैं देख लेता तो रास्ता काटकर दूसरे रास्ते से निकल जाता। अगर अचानक वह सामने आ जाता तो जय भीम कहने के पूर्व ही मैं उसे नमस्कार कर अलग हो जाता। मुझे अगर कोई जय भीम करता तो मैं केवल हाथ जोड़ता। सवर्ण मित्रों के साथ घूमते समय कोई जय भीम कहता तो मैं खुद को उनमें पराया महसूस करता। अपनी असलियत के पर्दाफाश का भय महसूस होता। मेरी खरी जाति का पता चल जाए तो लोग मुझे घर से बाहर कर देंगे, मुझे मारेंगे, मेरी पत्नी को सताएंगे। यह सोचकर मैं भयभीत होने लगा। मेरे साथ में बहन बनी भी थी, मुझे अपनी इज्जत का डर लगता, नौकरी छोड़कर भाग जाने की इच्छा होती। मैंने स्थानांतरण के लिए अर्जी दी पर कोई लाभ नहीं हो सका। मैं जाति छिपाकर जी रहा था, वह घर मुझे लाक्षागृह की तरह लगता। दादा और संता माए वनी को गांव ले जाने के लिए आए, अब उसका विवाह जरूरी था। मैं वनी के लिए पति कहाँ और कैसे ढूंढता? मैं अक्कर मासी अलावा इसके लिंगायत कहकर जी रहा था। संता माए दादा की दरिद्रता से मैं लज्जित था। संता माए को पता था कि मैं जाते छिपा कर रहता हूँ और मांस खाने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। शायद इसलिए वह हनूर से बैल का 2 किलो मांस ले आई थी। मैं बचपन में टांग की हड्डियाँ बड़े चाव से खाता था, वह उन्हें भी ले आई थी। यह सब देखकर मैं फ्यूज की तरह उड़ गया। मैंने तुरंत घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। संता माए पर मैं चिढ़ गया, पर संता माए मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे बेटे, तुझे यहाँ पर सब चीजें खाने के लिए नहीं मिलती, इसलिए मैं ले आई। कौन देख रहा है, हम भी तेरे साथ खा लेते हैं। मैं परेशान, कोई देख ले तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में हम लोगों ने मांस खा लिया, हड्डियां मैं बाहर फेंक आया मानो आग से बाहर निकल आया। तनाव कम हुआ। सवेरे उठकर देखता हूँ तो कुत्ते हड्डियों को चबा रहे थे, कुत्ते मानो मुझे ही फाड़कर खा रहे थे। संता माए दादा की एक और तकलीफ हमें होती, पति की मृत्यु के बाद संता माए माथे पर बिंदी नहीं लगाती थी, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती, इस कारण वह विधवा लगती। पर साथ में दादा पति की तरह रहते। पड़ोस की स्त्रियां पत्नी कुसुम से उन दोनों का रिश्ता पूछती। एक पड़ोसन ने तो संता माए के लिए सिंदूर भिजवा दिया। भूतकाल से हम लज्जित हो जाते, महारोगियों की चक्तों के भांति हम इस भूतकाल को छिपा रहे थे। मेरे उपनाम से मेरी जाति का पता नहीं लगता, इसलिए लोग ससुराल का उपनाम पूछते। मैं ससुराल का नाम कांबले न बतलाते हुए भोंसले या पवाड़ या कुछ कह देता। दादा जब मुझसे मिलने आते तब पिता का आधार महसूस होता। उनमें और मुझ में धर्म कभी बाधा नहीं बना। कोई उनसे जाति पूछता तो वह कहते लिंगायत, मेरे लिए वह धर्म छिपाते। बस की यात्रा में माँ अपने लड़के की सही उम्र छिपा देती है आधे टिकट के लिए, उसी प्रकार वह मेरे लिए अपना धर्म छिपाते। धर्म का बोझ कुली की तरह हम ढो रहे हैं। जाति बिरादरी का यह बोझ हम पर क्यों लादा गया है, हम इसे क्यों नहीं निकाल फेंक सकते? जाति, धर्म, कुल, खानदान, इन सारे कृत्रिम बंधनों में हम मनुष्य और मनुष्यता को ही खोते जा रहे हैं। जब मैं अहमदपुर में था तब सीताराम गुट्टे नामक एक बढ़िया घर मालिक मुझे मिला। उसके घर में हमें किसी बात की तकलीफ नहीं थी। यूँ सीताराम गुट्टे बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसकी पत्नी को हम घर के सभी सदस्य भाभी कहते, वह बहुत ममतामयी थी। मैं गुट्टेबाजी के बाड़े में रहने लगा, उसने कभी जाति वृत्ति नहीं जतलाई। धीरे धीरे मैं भीमनगर जाने लगा, रोज अनेक पत्र आते। बहुत दिनों तक हन्नूर का पत्र आया, पता चला कि चंदा माँ गुजर गई। कुसुम और मैं उस दिन रोते रहे। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती उत्साह से मनाने का निश्चय हुआ। जयंती की मीटिंग का निमंत्रण मुझे मिला, मैं गया नहीं क्योंकि इसके एक दिन पूर्व ही कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। बातचीत हुई, उनका नेता कह रहा था, लिम्बाले साहब, अपन सब 12 मासी, आपको शायद पता होगा कि निचली बस्ती के वे लोग अक्कर मासी हैं। इस मीटिंग में आप उनकी ओर से मत बोलिएगा, अध्यक्ष हमारे गुट का ही होना चाहिए, अक्कर मासी नहीं। इस विराट मूवमेंट को अगर यह पता चल जाए कि मैं भी अक्कर मासी हूँ तो, इस समाज को पता चल जाए कि मैं जारस संतान हूँ तो, क्या मैं यहाँ भी नकारा जाऊँगा? क्या मैं अकेला ही हो जाऊँगा? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जुलूस निकला। डगडू बाघंबर जोर जोर से नारे लगा रहा था, बंसोडे गुरुजी, धनसवाड़ीकर गुरुजी और कदम मामा जुलूस में घूम रहे थे। यह जुलूस विशुद्ध महारों का था, विशुद्ध खानदानी महार, और मैं इस पूरे जुलूस में मैं भ्रष्ट जारज खून वाला। मुझे हल्केपन का एहसास हो रहा था। भीम जन्मा सोमवंशी कुल में जैसी गीत पंक्तियां सुनकर मैं छटपटाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर भी पूरे महार जाति के नहीं हैं, वे भी महारों में सोमवंशी कुल के। इन सब में मैं कहाँ हूँ, चक्रवात में फंसा मैं। जुलूस आगे निकला, स्त्रियां सबके पीछे थी, आवेश में वे नारे लगा रही थी। जुलूस के कारण मैं भी पूरे आवेश में था, खून में तूफान उभर रहा था। दो स्त्रियां अलबत्ता काफी चिंतित लगी, एक को भूत प्रेत की बाधा हुई थी, नदी के पास कोई भूत उसे परेशान करता, रात में उसके साथ संभोग करता, वह नींद में परेशान हो जाती, चिल्लाती, पर भूत उसे छोड़ता नहीं था, उसे बेहाल करता। भूत की शरारत से वह चिढ़ गई थी, ओझा से गंडा डोरा बंधवा चुकी थी, पर कोई फायदा नहीं था। जयंती का जुलूस आगे आगे निकला। दलित युवक तनावग्रस्त थे, नामांतर के झगड़े भी खत्म नहीं हुए थे। इस जुलूस पर कोई पत्थर तो नहीं बरसाएगा, इस विचार से मैं भीतर ही भीतर परेशान था, क्योंकि कल ही एक खबर पढ़ी थी कि ऐसे ही किसी जुलूस पर कहीं कीचड़ उछाला गया था। खबर में कहा गया था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा की अप्रतिष्ठा की गई थी। कारण इतना ही कि बाबा साहब की प्रतिमा दलितों के आत्मतेज का प्रतीक बन गई है। मेरे ससुर गुजर गए, कुसुम अंतिम क्रियाकर्म के लिए गई, मेरे जीवन का एक संत और एक खलनायक मिट्टी के नीचे चला गया, शराब के नशे ने उसे मार डाला। मेरा स्थानांतरण लातूर नामक कस्बे में हुआ। अहमदपुर के स्नेही जनों को छोड़ लातूर आना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, पर नौकरी लातूर आ गया। नए शहर में फिर निवास का प्रश्न, जाति बिरादरी शत्रु की तरह बाधा बन रही थी। लातूर इतना बड़ा शहर, इतनी कोठियां बंगले चालें, पर मुझे कहीं कोई घर किराए पर नहीं मिल रहा था। मुसलमान और महारों को हम घर किराए से देना नहीं चाहते, ऐसा स्पष्ट कहा जाता। इस शहर को क्या आग लगा दे, इतना बड़ा शहर पर मुझे एक कमरा तक नहीं मिल सकता। प्रत्येक शहर जातिवादी, प्रत्येक गांव जातिवादी, प्रत्येक घर जातिवादी, प्रत्येक मनुष्य जातिवादी। जाति ने यहाँ के लोगों को भीतर से इतना तोड़ दिया है कि कहीं पर मनुष्य ही शेष नहीं है। घर घर में तुलसी का पौधा दिखता, बैठक में राम शंकर की तस्वीरें दिखती। ये लोग मुझे पराए लगते, ये बस्तियाँ भी पराई लगती। गले में लिंग अथवा जनेऊ पहने हुए लोग मुझे अपने नहीं लगते। मेरे शरीर पर साफ सुथरे कपड़े हैं, मैं रोज साबुन से नहाता हूँ, टूथपेस्ट से दांत साफ करता हूँ, मुझमें कहीं पर भी अस्वच्छता नहीं है। फिर भी मैं अछूत क्यों? गंदा सवर्ण आदमी यहाँ स्पृश्य होता है, तथा शुद्ध चरित्र का साफ रहन सहन वाला अछूत अस्पृश्य। जाति बिरादरी के रेवड़ों से बना हुआ यह शहर अपनी जाति की बस्ती में ही प्रत्येक व्यक्ति निवास चाहता है। लातूर में मुझे कहीं पर मकान नहीं मिला। अनेक मित्रों को मैंने घर ढूंढने के लिए कहा, पर शहर में मकान मिलना संभव ही नहीं था। अंत में निराश होकर मैं भीमनगर में चला गया। वहाँ संडास नहीं, बाथरूम नहीं, स्त्रियाँ खुले में नहाती, खुले में पेशाब करती। भीमनगर में प्रवेश करते समय या वहाँ से निकलते हुए मैं शर्म महसूस करता। सवेरे और शाम सड़कों पर औरतें शौच के लिए बैठी होती, उनमें से गुजरते हुए मैं बहुत संकोच का अनुभव करता। इस बस्ती में अधिकतर रिक्शा चलाने वाले मजदूर और कुली ही रहते हैं। प्रत्येक का उधर उसके हाथ पर, उधर ही उसके लिए सब कुछ, पेट की आग बुझाना ही उनके लक्ष्य की सीमा। इस बस्ती में मुझे जुगुप्सा होती। इस बस्ती के संस्कारों से मैं दूर जाना चाह रहा था। मैं दलित ब्राह्मण हो चुका था, पर सवर्ण मुझे अपने पैरों के निकट भी नहीं आने दे रहे थे। भीमनगर या मुसलमानों की बस्ती, इनमें से किसी तीसरे स्थान पर मुझे जगह मिल ही नहीं सकती थी, तीसरा पर्याय ही नहीं। लातूर के भीमनगर का मतलब है शमशान भूमि। इस स्थान को मारवाड़ी शमशान भूमि कहा जाता। पूरे शहर की लाशें यहाँ जलाई जाती हैं। सड़क पर स्थित यह शमशान भूमि के दीवार पर किसी ने छप्पड़ डाल दिया है, किसी ने चार टीन। ऐसे ही चार टीन के तथाकथित मकान में मैं रह रहा हूँ। घर के पीछे हमेशा प्रेत जलाए जाते। प्रेतों का जलना शुरू होता कि मकान की टीनों पर से धुआं गुजरता। कभी कभी दो दो तीन तीन प्रेत जलते। जलते प्रेतों की दुर्गंध पूरी बस्ती में फैल जाती। खाना खाते समय किसी आत्मीय जन की आर्त और करुण आवाज सुनाई देती। घर के पीछे की शमशान भूमि मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। मैं बेचैन हो जाता, खोपड़ी फटने की आवाज से जी घबरा जाता। मानसिक शांति ही नहीं थी। मेरी लड़की हमेशा बीमार रहने लगी। अस्मिता को जब बहुत बुखार चढ़ जाता तो मैं शमशान भूमि के पैर छूता। जगह ठीक नहीं, घर बदलना चाहिए, पर घर कहाँ मिलेगा। रात्रि के 12:01 बज चुके हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, सिर फटा जा रहा है। भीमनगर गहरी नींद में होगा शायद। शमशान भूमि में शायद किसी की चिता जल रही है, पर मैं तो जीते जी जल रहा हूँ। ऐसी एकाकी रात्रि में मैं ना हस्त मैथुन कर सकता हूँ और न रंडियों की कोठियों की ओर जाने की सोच सकता हूँ। मैं देह के परे जा चुका हूँ। मध्य रात्रि के समय जैसे सिद्धार्थ बाहर निकल चुका था वैसे मैं रोज बूढ़े व्यक्तियों को देखता हूँ, बीमारी से जर्जर। रोज की प्रेत यात्राएं, बाजों की आवाज, प्रेतों का जलना, रिश्तेदारों का रोना। मुझे सिद्धार्थ का गृह त्याग याद आने लगा है। शाम के समय टीन की छत पर बैठ जाता हूँ। शमशान भूमि में चिता मंद गति से जल रही है। ससुर को भी ऐसे ही जलाया गया होगा। चिंदा माई मिट्टी में घुल मिल गई होंगी। इस भीमनगर में नींद लेने वाले अनेक लोग हैं। झोपड़ियों को स्पर्श करती हुई यह सड़क, दूर से दिखलाई देने वाला वह घूरा। इस सुनसान मध्य रात्रि में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ किसी प्रेषित की, किसी देवदूत की। कम से कम शमशान में स्थित कोई शरारती भूत तो आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता सिवा कुत्तों के भौंकने की आवाज के। मध्य रात्रि में पेशाब को उठी हुई वह पड़ोसन मुझे देखकर संकोच के साथ खड़ी है, इसका मुझे एहसास हो जाता है। मैं नीचे उतर आता हूँ, घर के भीतर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। घर एक आदिम गुफा, मैं कसमसा रहा हूँ। निदान प्रातःकाल में कोई एक स्वप्न दिखलाई दे, माया देवी को जैसे स्वप्न दिखा था सिद्धार्थ के जन्म के समय। हनूर से पत्र आया है, पमी और इंदिरा की शादी तय हुई, अक्कलकोट में एक ही घर में दोनों को दिया गया है। दोनों बहनें अब एक दूसरे की जेठानियां देवरानियां बनकर ससुराल में जाएंगी। मुझे खुशी हुई कि चलो दोनों की शादियां तय हुई। इंदिरा दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी और पमी 8-9 वर्ष की थी। इसी उम्र में वनी का विवाह होकर टूट गया था। मुझे नानी और राम बाप का किस्सा याद आ रहा था। नानी और दादी ने अपने लड़के और लड़कियों की शादियाँ जब दोनों बहुएं गर्भवती थीं तभी तय कर दी थी। एक के लड़का दूसरे के लड़की हो जाए तो यह शादी करनी ही पड़ती थी। दोनों को लड़के या लड़कियां हो जाए तो विवाह का इकरारनामा टूट जाता था। गर्भवती स्त्री के पेट में कुंकुम लगाकर विवाह संपन्न कराने की यह पद्धति बड़ी ही विचित्र और घिनौनी लगती है। पमी और इंदिरा की सास मालन, यह मुसलमान औरत, स्वामी ड्राइवर उस पर फिदा हो गया। स्वामी ड्राइवर ने बड़ी कोशिश से मालन को उसके पूर्व पति से तलाक दिलवाया। स्वामी ड्राइवर लिंगायत, इस स्वामी से मालन के दो लड़के हुए। एक गुरु सिद्ध पमी का पति 14-15 वर्ष का था, दूसरा बसवर्णा इंदिरा का पति 10-12 वर्ष का। मालन के मुसलमान पति से एक लड़की थी चांदबी नामक। यह लड़की मजदूरी करके अपने शराबी पति का घर संभालती है। स्वामी ड्राइवर की सोना नामक एक लड़की सोलापुर में वैश्या व्यवसाय करती है। पमी और इंदिरा की शादी निश्चित करते समय माँ मुसलमान और बाप लिंगायत कहा गया था, क्योंकि स्वामी ड्राइवर और हमारे काका दोनों लिंगायत, पर मसामा महार और मालन मुसलमान, मसामा मुसलमान से हुई थी ऐसा कहा गया है। दादा को बाप के रूप में बताया गया, दादा तो मुसलमान था ही। शादी के तुरंत बाद कुछ कर्मकांड हेतु पमी इंदिरा को ससुराल अर्थात अक्करकोट ले जाया गया। उसके साथ वनी भी थी। पमी इंदिरा के ससुराल के सम्मुख शराब का अड्डा था। शराब बेचने वाले मालिक में और वनी में दोस्ती हो गई। दो दिन बाद वनी, पमी, इंदिरा वापस आए हमेशा के लिए, क्योंकि मसामा महार जाति की हैं, दलित हैं, इसका उन्हें पता चल गया था। नई नई शादी इस तरह टूट गई, गुड़िया की शादी की तरह। इंदिरा अब तीसरी में पढ़ रही है और पमी जलावन इकट्ठे करती घूम रही है। दोनों के माथे सफ़ेद सफ़ेद थे। अक्कलकोट में शराब बेचने वाला व्यक्ति वनी की ओर आकृष्ट हुआ था। उसने वनी का पता पूछ लिया था। उसका उपनाम था इंटे। शराब, अफीम और गांजा बेचना, यही उसका व्यवसाय था। चाकू से खेलने वाला, अनेक बार जेल हो आया था। पुलिस की ब्लैक लिस्ट में उसका नाम था। पहली पत्नी का खून कर चुका था। आयु में बनी से काफी बड़ा, शराब के ग्राहक के रूप में वह हमारे घर आया। शराब पी, काका को पिलाई, नशे में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। काका तुलजापुर गए और इंडे के साथ वनी की शादी लगा कर आए। मैं बस्ती की चौपाल पर गया था। चौपाल पर मसारना और अंकुशारना चमड़ा सीट बैठे थे। चन्नू पटेल की गाय का बछड़ा मर गया था। बछड़ा मर जाने के कारण गाय दूध नहीं दे रही थी। उसका वात्सल्य फूट के आ नहीं रहा, बड़ी परेशानी थी। गाय दूध नहीं दे रही थी, गाय दूध दे इसलिए बछड़े का प्रतिरूप तैयार किया जा रहा था। बछड़ा मर जाने के बाद उसका चमड़ा निकाल दिया जाता है, सुखाया जाता है। गाय का दूध रुक गया तो वह दूध दे, इसलिए अंकुशारना और मसारना दोनों उस मृत बछड़े के चमड़े को फिर से सी रहे थे। भीतर भूसा भरकर पैरों के स्थान पर लकड़ियां बांधी गई थी, जैसे कोई थैला सिया जाता है, वैसे प्रतिरूप सिया जा रहा था। ऊपर से बछड़े का चमड़ा, भीतर भूसा तथा लकड़ियां, इस प्रतिरूप को गाय के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उसे देख गाय रंभाती है, प्रतिरूप को वात्सल्य से चाटती है और उसका वात्सल्य फूट पड़ता है। जानवरों तक में प्यार होता है, ममता होती है। गाय उस प्रतिरूप को बछड़ा समझकर प्यार करती है, पर बछड़े के स्थान पर होगा उसका प्रतिरूप निर्जीव मनुष्य, उसको फंसाकर दूध निकाल ले जाता है। धीरे धीरे गाय के सामने से प्रतिरूप निकाल दिया जाता है, मनुष्य भी एक ऐसा ही निर्जीव प्रतिरूप। किसी गर्भवती स्त्री का नवजात शिशु अगर मर जाए तो क्या उस मृत शिशु की चमड़ी उधेर कर उसमें रुई और चिंदियां भरकर उस चमड़े को फिर से सीकर और उस माँ के पास दूध के लिए सौंपा जा सकता है? ऐसा जब हो तभी शायद गायक के करुण स्वर को ये लोग समझ पाएंगे। परस्या, महाद्या, मारत्या, अशोक की शादियां हो गई हैं, प्रत्येक के बाल बच्चे हो गए हैं, चंपा की भी शादी हो गई है। मेरे पीछे कितने मौसम चले गए, बह गए, जल गए। मनुष्यों का यह ऋतु चक्र, ऋतु संहार। भोसले गुरुजी, गंगोड़ा गुरुजी अब थक गए हैं, मुल्ला गुरुजी कुछ ही दिनों में रिटायर हो जाएंगे, क्या कालचक्र को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? मनुष्य नाम का एक पेड़, पेड़ पर उम्र रूपी पत्ते, दिन ब दिन मुरझाने वाले मृत्यु रूपी आंधी में मनुष्य रूपी पेड़ भी टूट जाएगा। सातू बाप के वंश की अंतिम उत्तराधिकारी संता माए अब काफी थक गई हैं, दादा भी। मनुष्य के जन्म के बाद शमशान उसे छूने के लिए उसका सतत पीछा करता रहा है। मृत्यु का यह खेल अपने पर ना उल्टे, इसलिए मनुष्य भी जीवन मैदान में सतत दौड़ता रहता है, गिरता रहता है। मारुति की माँ हौसा गुजर गई है, लखू बाप के पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। उसे बीड़ी के लिए मैंने 10 पैसे दिए, उसने भरपूर आशीर्वाद दिया। लखू बाप उस भानामती क्यों नहीं करता? भानामती द्वारा अमीरों की तिजोरी के पैसे अपने झोपड़ी में क्यों नहीं ला सकता? क्यों नहीं आदेश देता किसी भगवान को कि वे शोषक सेठों की गर्दनें तोड़ दें? उसकी मंत्र विद्या उसे भूखा क्यों मारती है? दुर्वासा जब अपने लड़के को लेकर मुझे बुलाने के लिए आया तो मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा। मैंने सोचा संभवतः उसने दूसरी शादी की होगी, 5 वर्ष पूर्व की यादें ताज़ा हो थी। दुर्वासा का विवाह उसकी बहन की लड़की के साथ हुआ था। दोनों कुछ महीने तक हंसते खेलते रहे, परंतु कुछ ही दिनों बाद दुर्वासा की पत्नी पर भीमाणा नामक सेठ साहूकार ने कब्जा कर लिया। गांव और बस्ती में हो हल्ला हुआ। दुर्वासा ने अपनी पत्नी और भीमाणा को रंगे हाथों पकड़ लिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसी समय अपनी बहन को संदेशा भेजा, तेरी लड़की कुएं में गिरकर मर गई है। दुर्वासा की बहन और जीजाजी रोते हुए आए तो उसने दरवाजा खोलकर असलियत बता दी। उस वक्त दुर्वासा अपनी पत्नी का कान, स्तन और नाक काटने के लिए चाकू लिए तैयार था। सगी बहन की वह लड़की पर सबने बीच बचाव किया। दुर्वासा गुस्से से थर थरा रहा था। इस घटना को आज 5 वर्ष हो गए। दुर्वासा की पत्नी ने भी मुझे संदेशा भेजा। मैं आश्चर्यचकित हुआ। दुर्वासा अब अपनी पत्नी के साथ मजे में जी रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं घर की ओर निकला तो लड़ाई झगड़े की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे रही थी। नागी रो रही थी, मसामा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। चंदू चुपचाप बैठा था। चंदू ने दूसरी शादी की थी पर वह मान नहीं रहा था। मसामा चिढ़ गई थी, नागी का भविष्यकाल उसके सामने था। मसामा चंदू से कड़े स्वर में पूछ रही थी और वह खामोश था। अंत में मसामा ने कहा, अरे वह तलवार इधर ले आ, देखें यह कितनी देर सच को छिपाता है। नागी रो रही थी। चंदू आखिर मान गया कि उसने शादी की है। मैं बाहर से ही सब सुन रहा था, भीतर जा नहीं सका, चुपचाप वापस आ गया। दादा, संता माए, मैं खाना खा रहे थे। इतने में गोंधली समाज का पांडुरंग भागता आया। उसकी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था। संता माए ने थाली सरका दी और प्रसूति के लिए निकल गई। छुट्टियां खत्म हो रही थी। पत्नी कुसुम प्रसूति के लिए वारसी रुकी हुई थी, उसके यहाँ भी जाना था। लौटते हुए सोलापुर में एक दिन रुकने की इच्छा थी। मैं शाम की बस से निकलने की तैयारी करने लगा। मैं लौटने वाला था इसलिए सब इकट्ठे हुए। संता माए, दादा, काका, मसामा, नागू, चंदू, वनमाला, प्रमिला, सुनंदा, श्रीकांत, इंदिरा सभी विदाई के लिए इकट्ठे हो गए। बस में देर थी। हम सब में केवल चंदा माँ नहीं थी, उनका भाव हम सब तीव्रता से महसूस कर रहे थे। बस आई, मैं बैठ गया। दादा मेरे पास आए, सोच समझकर पैसे खर्च कर उन्होंने कहा। कंडक्टर के पास गए, मेरा नाती है, टेलीफोन में साहब है, उन्होंने कंडक्टर से कहा। कंडक्टर ने सीटी दे दी, बस चली। मैं क्षण क्षण घर से दूर होता जा रहा था। सोलापुर उतर गया, एक पुराने दोस्त से भेंट हो गई। उसने होटल में चाय पिलाई, घर चलने का आग्रह किया। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सका। माने मेरा मित्र देहात का, भयावह दरिद्रता से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। अब वह किसी बैंक में नौकरी कर रहा था। उसके आचार विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अपनी माँ को वह गांव से शहर ले आया है, उसकी शादी भी हुई है। झोपड़ी में रहने वाला यह आदमी आज प्रस्थापित हो गया है। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी उसकी पत्नी, घर काफ़ी ढंग से सजाया है उसने। मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह जन्म से दलित था पर दलित साहित्य उसने पढ़ा नहीं था। माने की माँ बड़े संकोच से मुझसे बातें कर रही थी। माने की अब माँ फटी पुरानी साड़ी पहने गोबर उपलियाँ इकट्ठी करती घूमती। 9 गज की साड़ी पहनने वाली हिरामा वसी 6 गज साड़ी पहने खड़ी थी। चोली की जगह ब्लाउज पहनी थी। केश रचना भी बदल चुकी थी। माने अब साहब हो चुका था। साहब की माँ को साहब की माँ की तरह ही रहना चाहिए ना। सवेरे में बारसी निकला, निकलते समय नजर अचानक लॉज पर गई। एक नया विश्व दर्शन हो रहा था। चंद्या और उसकी पत्नी लॉज में रुके थे। इसी शहर में चंद्या की दो बहनें थीं, पर वो झोपड़ियाँ में रहती थी। चंद्या के पास अब पैसे थे, जब पैसे नहीं थे तब की बात भिन्न थी। अब नौकरी है, सुशिक्षित पत्नी है, अब वह मध्यवर्गीय हो चुका है, अब वह लॉज पर ही उतरेगा, बहन के पास क्यों जाएगा। बारसी की बस पकड़ी, लातूर जाना जरूरी था। छुट्टियां खत्म हो रही थी, अनेक समस्याओं से मैं घिर रहा था, आंधी की तरह घूम रहा था अपने ही बीच। मेरे साथ नीली टोपी वाला एक प्रौढ़ व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था, शायद वह रिपब्लिकन वाला है। उसे बैठने के लिए मैंने जगह दी, संभवतः मेरी जाति को वह भाप गया था। बारसी स्टैंड पर ही पता चला कि कुसुम के लड़का हुआ है। लड़के का नाम अनारी रखने का निश्चय मैं पहले ही कर चुका था। छुट्टियां बढ़ा ली, हनूर को पत्र द्वारा सूचित किया। उम्र के 27वें वर्ष में मैं अनेक जिम्मेदारियां लिए जी रहा हूँ। 18 वर्ष की आयु के पूर्व ही पत्नी 3 बार गर्भवती हुई। एक खेल चल रहा है सी सॉ का, जीवन की भी ऐसी ही स्थिति है, चढ़ाव उतार। यह कितनी ऊंचाई कि ऊपर देखूं कि सिर पर की टोपी नीचे गिर जाती है, और यह कितनी गहराई कि नीचे देखूं कि आंखों में अंधेरा छा जाता है। आज रमजान की ईद है, दादा की ईद। दादा ने बुधवार के बाजार में शर्ट टोपी खरीदी होगी उधार, मस्जिद में नमाज पढ़ने गया होगा, संता माई किसी मुसलमान के घर सुरखुमा मांगने गई होंगी। दादा की मृत्यु के बाद उनका जनाजा कौन उठाएगा, मुसलमान कैसे आएंगे, दादा का क्रिया कर्म क्या मुसलमान करेंगे, फिर दादा को कहाँ दफनाया जाएगा, दादा के प्रेत का क्या होगा, उनकी शमशान भूमि कहाँ है। संता माए मसा माँ की मृत्यु के बाद उनके क्रियाकर्म के लिए क्या लोग इकट्ठे होंगे। व्यवस्था का यह चक्रव्यूह ऐसा क्यों रचा गया है, इस नीति अनीति को किसने बनाया है, क्यों बनाया है। मेरे जन्म को ही अगर अनैतिक घोषित किया गया हो तो मैं किन नीतियों का पालन करूं। तो ये था आपके समक्ष शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी, जिसमें स्त्री पुरुष के अनैतिक एवं असामाजिक संबंधों से उत्पन्न संतान की मर्मस्पर्शी व्यथा कथा का नाम है अक्कर मासी, जिसमें मराठी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार शरण कुमार लिम्बाले का भोगा हुआ यथार्थ अपने अस्तित्व की पहचान के लिए केवल अपनी माँ का ही आंचल नहीं पकड़ता, बल्कि संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर देता है। आत्मसंघर्ष, आत्मविडंबना, व्यवस्था विरोध, आतंकित मानसिकता और सामाजिक संकट जैसे भावबोधों से सुनियोजित यह आत्मकथा मराठी से अनुदित है। लेखक ने बड़ी सीधी सपाट भाषा शैली में जारस संतान की कुंठा, क्षोभ और आक्रोश को उसके सामाजिक परिवेश में उकेरा है। समाप्त।